आगे सबक देखिए भाई, औ बरहन शफी उकुदिया लहू बिहा व इल्लम युहज़िर समन वक्त दावा व इदा कुजिया लजिमहु इहज़ारुहु व लिल मुश्तरी हब्सुद्दार बिकब्ज़ समनिही फलौ क़ील लिश्शफीई अद्दि समन फअख्खर ला तब्तुल शुफ़अतुहु वल ख़स्मुल बाइउ इल्लम युसल्लिम। शरह विकाया में शुफा के मसाइल हम पढ़ रहे हैं भाई, और तलब खुसूमत की तफसील जिक्र हो रही थी कि सबसे पहले काजी जो है उस जमीन की हुदूद अरबा पूछेगा कि कहां पर वाक़े है, पूरी तफसील बयान की जाएगी, और फिर शफिया से पूछा जाएगा कि वो किस वजह से शुफा कर रहा है। मसलन वो बतलाता है कि मेरे साथ वाली जमीन मेरी है, तो उससे भी पूरी तफसील पूछी जाएगी कि कौन सी जमीन, कौन सी गली में, कौन सा प्लाट आपका है जिसकी वजह से आप शुफा कर रहे हैं। उसके बाद मुश्तरी की तरफ मुतवज्जे होकर उसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई, क्या ये वो साथ वाली जमीन जिसकी वजह से शफीय शुफा कर रहा है वो शफीय ही का है, वो प्लाट या वो घर शफीय ही का है। अगर वो इकरार कर लेता है तो फिर अगली चीज की तरफ मुंतकिल होंगे, लेकिन अगर वो इकरार नहीं करता, मुद्दाले इकरार नहीं करता, तो फिर शफीय से काजी गवाह तलब करेगा कि गवाह पेश करो कि वो घर तुम्हारा है जिसकी वजह से तुम शुफा कर रहे हो। अगर वो गवाह पेश कर दे तो भी मुकदमा आगे चल पड़ेगा, लेकिन अगर वो गवाह पेश नहीं कर सका तो फिर मुश्तरी जो है उस पर कसम आएगी। और मैंने आपको बतलाया था कि काजी जो है वो गाइब के खिलाफ बयना नहीं सुन सकता भाई, जिसके खिलाफ भी बयना सुनना है उसका होना जरूरी है, और फिर बयना पेश न कर सके तो दूसरे पर कसम आएगी भाई। और बयना हमेशा इस बात के लिए होता है, इल्जाम के लिए होता है, किसी पर कोई चीज लाजिम करने के लिए, और जो कसम होती है वो इनकार पर होती है, इनकार के लिए होती है। बात समझ में आ गई? कसम के जरिए किसी चीज को साबित नहीं किया जाएगा, बल्कि कसम के जरिए रद्द किया जाएगा। साबित किसके जरिए करेंगे? बयना के जरिए। अच्छा, तो उसको काजी कसम देगा। कसम फिर किस चीज पर दी जाएगी? एक कसम है हासिल पर और एक कसम है सबब पर। सबब क्या है? शेरा, कि उसने वो जो मकान यूं को बेअ है, वो जो साथ वाला मकान बिका है, वो जो फरोख्त हुआ है, वो अगर फरोख्त न होता तो शफी को शुफे का हक भी ना होता। वो फरोख्त हुआ तो उसको हमसाये को शुफे का हक मिल गया। तो सबब क्या है शुफे का? बेअ भाई। और हासिल क्या है? कि शफी को शुफे का हक मिल गया। बेअ हुई तो क्या मिला? शुफे का हक मिला। तो बेअ है सबब और शुफे का हक वो क्या है? हासिल और नतीजा है। अब काजी किस पर कसम दे? तो आपको इन्होंने तफसील बयान कर दी कि भाई अगर तुम मुत्तफकुन अलैह मसला हो फिर तो आप हासिल पर भी कसम दे सकते हैं। फर्ज करें इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक भी तीनों सूरतों में शुफा आता, बाकी अइमा के नजदीक भी तमाम सूरतों में शुफा आता, तो फिर शुफा करने वाला चाहे शरीक फी नफसिल मबी होता, चाहे शरीक फी हकिल मबी होता, चाहे जार होता, चाहे तीनों को शुफे का हक होता या नहीं होता। तो लिहाजा अब आप हासिल पे कसम दे सकते थे, आप उसको कह सकते थे कि कसम उठाओ इसको शुफे का हक नहीं है, कसम उठाओ कि इसको शुफे का हक नहीं है। अब चाहे ये शरीक फी नफ्सिल मबीअ हो, चाहे ये शरीक फी हकिल मबीअ हो, चाहे ये जार मुलासिक हो, तीनों सूरतों में इसको ये तो शुफे का हकदार है, लिहाजा जो मुद्दा अलैह है वो कसम नहीं उठा सकेगा भाई। जब ये शुफे का हकदार है वो ये नहीं कह सकेगा ये शुफे का हकदार नहीं है। लेकिन यहां तो मसला मुख्तलफुन फी है भाई, امام شافعی رحمہ اللہ شریکوں کے لیے تو شفے کے قائل ہیں، جار ملاسک کے لیے شفے کے قائل نہیں. اب اگر آپ اس کو قسم کھلواتے ہیں کہ قسم اٹھاؤ یہ شفے کا حقدار نہیں ہے، اب یہ جار ملاسق ہے مثلاً، عند الاحناف تو یہ شفے کا حقدار ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو شفے کا حقدار نہیں، تو وہ فریق مخالف تو قسم اٹھا لے گا بھائی، اور اس بیچارے کا حق مارا جائے گا بھائی، وہ کہے گا واللہ قاضی صاحب یہ شفے کا حقدار نہیں ہے. تو لہذا جب متفقن علیہ مسئلہ ہو تو قسم جو ہے وہ حاصل پر دیں، حاصل پر دے سکتے ہیں، اور جب مختلفن فی مسئلہ ہو، جب مختلفن فی مسئلہ ہو تو قسم سبب پر دی جائے بھائی. جیسے یہاں پر قسم کس پر دی جائے گی؟ اگر جار ملاسق ہے تو جار ملاسق تو مختلف انفی ہے، اس کے بارے میں تو اختلاف ہے، لہذا آپ قسم کس پر دو؟ سبب پر. اور اگر وہ شریک ہے، چاہے فی نفس المبی ہے چاہے فی حق المبی، تو کس پر آپ قسم دے سکتے ہیں؟ حاصل پر قسم دے سکتے ہیں. تو آپ اگر یہ جار ملاسق ہے، آپ اس کو قسم دیں کہ قسم اٹھاؤ کہ آپ نے یہ مکان نہیں خریدا، آپ نے یہ مکان، کیونکہ یہ سبب ہے، مکان خریدا ہے، معلوم ہوا اس کو شفے کا حق ہے بھائی، تو وہ اب کوئی تاویل وغیرہ نہیں کر سکے گا بھائی، تو وہ اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور وہ تسلیم کر لے گا، وہ قسم سے انکار کر دے گا تو شفا ثابت ہو جائے گا، قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا. صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو تین صورتیں ہو گئیں، یا تو مشتری کیا کر لے، اقرار کر لے، کیا کر لے، اقرار کر لے شیرا کا، یا شفیع کیا کر دے، گواہ پیش کر دے، دو گواہ پیش کر دے کہ بے ہوئی تھی، اور آخر میں اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر اسے قسم لیں گے کہ قسم اٹھاؤ تم نے مکان نہیں خریدا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں بھی وہی تین صورتیں، اول اس سے پوچھیں گے کہ کیا تم اقرار کرتے ہو یہ مکان تم نے خریدا ہے، تو وہ اقرار نہیں کرتا، تو شفیع سے قاضی کہے گا گواہ لاؤ بھائی کہ یہ مکان آپ کے ساتھ والا فروخت ہوا ہے، اس کے کوئی گواہ پیش کرو. تو اگر وہ گواہ پیش کر دیتا ہے، اگر پہلی بات اگر وہ اقرار کر لیتا ہے میں نے واقعی، مشتری کہتا ہے میں نے یہ مکان خریدا ہے، تو بھی شفا کیا ہوا؟ ثابت. اگر وہ اقرار نہیں کرتا تو شفیع پر کیا آئے؟ گواہ. اگر وہ گواہ پیش کر دے تو بھی شفا ثابت، فیصلہ کر دے گا قاضی. اور اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر مشتری سے وہ قسم لی جائے گی، اور کون سی قسم لی جائے گی، حاصل پر یا سبب پر، تو وہ آپ موقع محل دیکھیں گے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں او برہنہ شفیع قضی لہ بہا، یا شفیع نے بینہ قائم کر دی، برہنہ کا معنی ہے گواہ پیش کرنا، بینہ قائم کرنا، یا شفیع نے گواہ قائم کر دی، قضی لہ بہا، تو فیصلہ کر دیا جائے گا اس کے لیے بہا، اس شفے کا، اس شفے کا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. وَإِن لَّمْ يُحْضِرِ الثَّمَنَ وَقْتَ الدَّعْوَةِ، یہ ساتھ ایک اور صورت میں مسئلہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی شفیع کے لیے کیا سمن قاضی کے پاس پیش کرنا ضروری ہے؟ قاضی کے پاس مقدمہ لے کر گیا ہے، فیصلہ ہونا ہے، اور شفیع کس طرح لے گا وہ زمین اگر شفا ثابت ہو جائے؟ اسی کے مثل سمن دے گا جتنے مشتری نے ادا کیے تھے. تو کیا اس کے ذمے لازم ہے، واجب ہے کہ وہ سمن ساتھ لے کر قاضی کے پاس جائے اور قاضی پھر ہی مقدمہ سنے؟ سمن نہ ہو تو قاضی انکار کر دے نہیں میں مقدمہ نہیں سنتا، سمن کی طرح ہے. کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں، سمن لانا ضروری نہیں، سمن بے شک وہ ساتھ لے کر نہ آئے پھر بھی کیا کریں گے، پھر بھی فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جائے گا بھائی. یہ معنی ہے وہ علم یحضر السمن وقت الدعوی، ان آتا ہے شرط کے لیے، اگر اگر، اور ساتھ اس کے وہ ہو وہ علم، تو پھر یہ ان وصلیہ کہلاتا ہے، اور اس کا ترجمہ اگرچہ کے ساتھ کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ اگرچہ. دیکھو اب ترجمہ سننا، او برہنہ شفیع، یا بینہ قائم کر دی شفیع نے، قضی لہ بہا، تو اس کے لیے شفے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، وَإِن لَمْ يُحْضِرِ السَّمَنَ وَقْتَ الدَّعْوَى اگرچہ وہ سمن حاضر نہ کرے دعوے کے وقت, اگرچہ وہ سمن اگرچہ اس نے دعوے کے وقت حاضر نہیں کیے, پھر بھی قُضِيَ لَهُ بِهَا اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا. بھئی فیصلہ کر دیا, سمن تو وہ لایا نہیں, تو کہتے ہیں بھائی وہ اذا قضی لزمہ احضارہ, جب فیصلہ کر دیا جائے تو لازم ہوگا اس پر اس سمن کا حاضر کرنا. اب قاضی اس کو کہہ دے گا کہ بھائی مثلا آج ہی یا کل ہی فلاں وقت میں تم نے سمن لے کر آنے ہیں یہاں پر, اور کس کے حوالے کرنے ہیں؟ مشتری کے حوالے کرنے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وہ اذا قضی لزمہ احضارہ, جب فیصلہ کر دیا جائے تو لازم ہوگا شفیع پر سمن کو حاضر کرنا. وللمشتری حبس الدار بقبض ثمنہ, اور مشتری کے لیے یہ جائز ہے. جائز ہے کیا؟ جائز ہے حبس الدار, گھر کو روکنا, گھر کو مشتری یہ کر سکتا ہے کہ جب تک قاضی نے فیصلہ تو کر دیا, زمین کا مالک کس کو بنا دیا؟ شفیع. کس کو مالک بنا دیا؟ شفیع. لیکن بائے کا حق ہوتا ہے, بائے کا حق ہوتا ہے وہ مبیعے کو سمن کی وصولی کے لیے روک سکتا ہے. میں نے شروع میں مثال ذکر کی تھی, میری جیب پر ایک قلم لگا ہوا ہے, میں آپ سے ایجاب و قبول کرتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں میں نے یہ قلم آپ کو 100 روپے میں فروخت کر دیا, آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا. بس یہ ایجاب و قبول کرتے ہی آپ قلم کے مالک بن گئے. قلم بے شک میری جیب پر لگا ہوا ہے لیکن مالک آپ بن چکے ہیں. اب آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ لاؤ بھائی یہ قلم میرا ہے, اب میرے حوالے کر دو, تو میں قلم آپ کے حوالے کروں گا کیونکہ آپ مالک ہیں. لیکن اگر میں اس کو روکنا چاہوں قلم کو کہ نہیں بھائی آپ کے ذمے بھی تو 100 روپیہ سمن جو ہے وہ آ گئے, پہلے سمن دو پھر میں قلم آپ کو دوں گا, تو میں قلم کو روک سکتا ہوں. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے, مشتری کے پاس زمین تھی اور اس کا فیصلہ کس کے حق میں ہو گیا؟ شفیع کے حق میں, شفیع اس کا مالک بن گیا, لیکن مشتری اس زمین کو اپنے قبضے میں روک سکتا ہے سمن کی وصولی کے لیے. یہ معنی ہے وللمشتری حبس الدار بقبض ثمنہ, اور مشتری کے لیے جائز ہے گھر کو روکنا. بقبض ثمنہ لقبض ہونا چاہیے, وہی لام ہونا چاہیے ویسے, لیکن سب نسخوں میں با ہے یہاں پر. بقبض ثمنہ اس کے سمن پر قبضہ کرنے کے لیے, اس کے سمن پر قبضہ کرنے کے لیے مشتری کے لیے جائز ہے گھر کو روکنا. فلو قیل للشفیع, اچھا بھائی قاضی نے شفیع کو کہہ دیا کہ سمن لے کر آنا کل یا پرسوں یا ترسوں, کوئی وقت طے کر دیا جہاں کا وہ رہنے والا ہے وہاں سے آسانی سے سمن لے کر پہنچ سکے, کہ فلاں دن تم نے یہاں سمن لے کر پہنچنا ہے اور مشتری بھی آ جائے گا اس کو ادا کر دینا. اس نے تاخیر کر دی, اس وقت پہ سمن لے کر حاضر نہ ہوا, تو کیا تاخیر کی وجہ سے اس کا شفا باطل ہو جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی شفا باطل نہیں, اب اس کے حق میں فیصلہ وغیرہ ہو چکا ہے. یہ معنی ہے فلو قیل للشفیع اد الثمن فاخر, بس اگر کہا گیا شفیع کو اد الثمن کہ سمن ادا کر دو, فاخر تو اس نے تاخیر کر دی, مؤخر کر دیے, لا تبطل شفعته تو اس کا شفع باطل نہیں ہوگا. یعنی سمن کی ادائیگی میں اگر تاخیر بھی کرتا ہے تو اس سے شفع باطل نہیں ہو سکتا. والخصم البائع, اور فریق مخالف, یوں کو مدعا علیہ جو ہے البائع وہ بائع ہے, یہاں ترجمہ اچھی طرح سمجھ لو بھائی. والخصم البائع یہاں پر بات پوری ہو رہی ہے, اور فریق مخالف کون ہے؟ بائے ہے. بھائی کس وقت؟ کہتے ہیں اِلَّمْ يُسَلِّمْ اگر اس نے زمین سپرد نہیں کی, یعنی ابھی زمین کا قبضہ کس کے پاس تھا؟ بائے کے پاس تھا, اس نے مشتری کو زمین دی ہی نہیں تھی, تو اس صورت میں فریق مخالف کون ہوگا؟ بائے ہوگا بھائی, اس پر دعویٰ کیا جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ صرف اب بائے ہی کو عدالت میں لائیں گے, نہیں نہیں نہیں, اب مشتری کو بھی لانا پڑے گا کیونکہ مشتری مالک ہے بھائی. قبضہ کس کا ہے؟ صاحب ید کون؟ बाय, साहिब यद यानी कब्जे वाला। साहिब यद कौन?
बाय।
और मालिक कौन?
मुश्तरी।
तो लिहाजा मुकदमा बेशक बाय के खिलाफ वो चलाएगा लेकिन मुश्तरी का भी हाजिर होना जरूरी है। तो कहते हैं वल खस्मुल बाएउ और फरीक मुखालिफ, यूं को मुद्दा अलै जो है अल बाएउ वो बाए है, इल्लम युसल्लिम अगर उसने सुपुर्द नहीं किया यानी वो जमीन सुपुर्द नहीं की मुश्तरी के। ऐ खस्मु शफी अल बाएउ, शफी का फरीक मुखालिफ या मुद्दा अलै जो है अल बाएउ वो बाए है, इल्लम युसल्लिम अल मबीअ इलल मुश्तरी अगर उसने मबीअ सुपुर्द नहीं किया मुश्तरी के। बात समझ में आ रही है? पूरी इबारत शारह ने खोलकर बयान कर दी। वला तुस्माउल बय्यना तो अलैही हत्ता यहजुर अल मुश्तरी, वला तुस्माउल बय्यना तो अलैही। भाई देखो अभी कब्जा बाए का है तो मुद्दा अलै भी कौन, दावा भी किसके खिलाफ होगा? बाए के। तो बाए को हम ले आए काजी के पास, शफिया ने दावा कर दिया और मैंने आपको जाब्ता बतलाया था कि काजी गाइब के खिलाफ बय्यना नहीं सुन सकता। और यहां पर याद रखो जब काजी फैसला करेगा बाए के कब्जे से जमीन निकलवा कर किसको देगा, बाए के कब्जे में जमीन है तो काजी क्या कर रहा है, उसका मालिक किसको बना रहा है? शफिया को ना, शुफे का मुकदमा चल रहा है तो काजी ने उस जमीन का मालिक बनाना है शफिया को। लेकिन इस जमीन का मालिक कौन है? मुश्तरी है। तो मुश्तरी का भी होना जरूरी है भाई, मुश्तरी। और होगा ये कि ये जो बाय और मुश्तरी के दरमियान बैअ थी, अच्छी तरह समझ लें, बाय और मुश्तरी के दरमियान जो बैअ थी, काजी उस बैअ को तोड़ेगा और तोड़कर उस बैअ की निस्बत किसकी तरफ कर देगा? शफिया की तरफ। पहले बाय से खरीदार कौन था? मुश्तरी। अब यूं समझेंगे खरीदार कौन है? शफी है। तो जब काजी ने बाय और मुश्तरी के दरमियान बैअ को तोड़ना है तो ये फैसला और ये बय्यना मुश्तरी के भी खिलाफ हुई या ना हुई? मुश्तरी के भी तो खिलाफ हुआ ये मुकदमा, क्योंकि उसकी बैअ को आप तोड़ रहे हैं, फसख कर रहे हैं, इसलिए मुश्तरी का होना भी जरूरी है भाई। और फिर ये भी याद रखना काजी असले बैअ को नहीं तोड़ सकता, जो असले बैअ थी किसमें? बाय और मुश्तरी में। बस यूं समझो कि बै मुश्तरी से नहीं हुई, किससे हुई है? शफी से हुई है। निस्बत बदल देगा, क्या करेगा? निस्बत कहेगा ये निस्बत, अब गोया यूं समझो कि ये बै की निस्बत अब मुश्तरी की तरफ न करो बल्कि सीधा किसकी तरफ कर दो? शफी की तरफ कर दो। गोया शफिया ने खरीदा है किससे? बाय से। असले बैअ को वो खत्म नहीं कर सकता, सिर्फ निस्बत बदल रहा है। मुश्तरी की तरफ निस्बत ना की जाए बल्कि किसकी तरफ की जाए? शफी की तरफ। असले बैअ क्यों नहीं तोड़ सकता? क्योंकि अगर वो असले बैअ को तोड़ देता है फिर तो शफी का हक शुफा ही खत्म, बैअ ही नहीं हुई तो शुफा कहां से करते हो भाई? मसला समझ में आया? तो उस असल बैअ को बरकरार रखना है लेकिन उसकी निस्बत बदल दो, निस्बत मुश्तरी की तरफ ना करो अब बल्कि यूं समझो किसने खरीदा है? शफिया ने खरीदा है। बात अच्छी तरह समझ में आ गई? तो काजी असले बैअ को खत्म नहीं करेगा बल्कि सिर्फ उसकी निस्बत बदल देगा। तो गोया यूं ही समझो कि बाय से मुश्तरी ने खरीदा ही नहीं बल्कि किसने खरीदा है? शफिया ने खरीदा है। तो कहते हैं वला तुस्माउल बय्यना तो अलैही और बय्यना नहीं सुनी जाएगी अलैही उस बाय के खिलाफ। अला किस लिए आता है? जरर और नुकसान के लिए ना। तो बय्यना नहीं सुनी जाएगी अलैही बाय के खिलाफ हत्ता यहजुर अल मुश्तरी यहां तक के मुश्तरी हाजिर हो जाए। फयुफसख बि हुजूरिही तो फसख किया जाएगा बाय को बि हुजूरिही उसकी मौजूदगी में। तर्जमे पे नजर है फयुफसख बि हुजूरिही तो बै को फसख किया जाएगा उस मुश्तरी की मौजूदगी में। अब आगे शारह बयान कर रहे हैं कि भाई बाय तो है मुद्दा अलह, मुश्तरी को की मौजूदगी क्यों जरूरी है? मैंने बतला दिया क्योंकि वो मालिक है। कहते हैं इन्नमा यश्तरी तो हुजूरुल बाई वल मुश्तरी, कहते हैं शर्त है हाजिर होना बाय और मुश्तरी का, ले अन्नल मिल का लहू, इसलिए क्योंकि मिल्कियत मुश्तरी की है, वल यदलिल बाई और कब्जा बाय का है। फइदा सल्लम इलल मुश्तरी, पस जब वो मबिया उसने सुपुर्द कर दिया, इलल मुश्तरी किसके, हां ये दूसरी सूरत आ गई। कहते हैं ये वो सूरत थी जब बाय ने अभी जमीन सुपुर्द नहीं की थी। अगर बाय जमीन मुश्तरी के सुपुर्द कर चुका है, अब वो खसम नहीं, अब वो फरीके मुखालिफ नहीं, अब तो वो अजनबी बन चुका। बाय ने अपना मकान किसको बेचा, मुश्तरी को, और हवाले भी कर दिया, तो बाय तो बीच में से निकल गया, अब तो साहिब कब्जा भी मुश्तरी और मालिक भी मुश्तरी है, तो उससे मुकदमा चलेगा। कहते हैं फईदा सल्लम इलल मुश्तरी, पस जब बाय ने सुपुर्द कर दिया वो मबिया मुश्तरी के, तो ला यश्तरी तो हुजूरुल बाई, तो फिर शर्त नहीं होगा बाय का हाजिर होना, लिअन्नहु सारा अजनबियन, क्योंकि वो अजनबी हो गया, इस शुफा के मसले से अजनबी हो गया। शफिया को जमीन चाहिए, साहिब कब्जा भी मुश्तरी और मालिक भी मुश्तरी, तो बाय का अब यहां कोई दखल ही नहीं, उसकी बाय जो थी मुश्तरी से वो खत्म हो चुकी, गुजर गई। लियन्नहु सारा अजनबियन, क्योंकि वो अजनबी हो गया है। वह युकजा लिश्शफीई बिश्शुफाती, और फैसला कर दिया जाएगा शफी के लिए शुफे का। देखो इसको मतन को मतन से जोड़ो, वला तो पीछे आया था, वला तुस्माउल बय्यना तो अलैही हत्ता यहजुर अल मुश्तरी, के बय्यना बाय के खिलाफ नहीं सुनी जाएगी यहां तक कि मुश्तरी हाजिर हो जाए। फयुफसखा बिहुजूरिही, फिर बाय को उसकी मौजूदगी में फसख किया जाएगा। वह युकजा लिश्शफीई बिश्शुफाती, और फैसला कर दिया जाएगा शफी के लिए शुफा, वो बाय फसख करेंगे बाय और मुश्तरी के दरमियान, और शुफा का फैसला किसके लिए, शफी के लिए। ये माना है वयुक्ज़ा लिश्शफीई बिश्शुफाती, और फैसला कर दिया जाएगा शफी के लिए शुफे का। वल उहदतु अलल बाई, और उहदा जो है वो बाय पर होगा। उहदा कहते हैं बै के सही होने की जमानत, बै के सही होने की जमानत कि यह बै सही है, इसमें किसी किस्म की कोई खराबी वगैरह नहीं है। बाज़ औकात एक आदमी कोई जमीन वगैरह लेना चाहता है लेकिन उसको खौफ होता है कि जमीन में कोई मसला ना निकल आए, जमीन में कोई मसला ना निकल आए, किसी कोई और मालिक ना हो, या इसने पहले किसी और को ना बेच दी हो या कुछ, तो लिहाजा इस सूरत में फिर उसको कोई दूसरा थी मसलन जमानत देता है कि मैं जमानत देता हूं जमीन में किसी किस्म का मसला नहीं होगा, आपके पैसे नहीं डूबेंगे, अगर आपके पैसे डूबे मैं जामिन हूं, मैं दूंगा अपनी तरफ से। तो अब वो साथी तैयार हो गया और उसने वो जमीन खरीद ली। अब जमीन के अंदर पता लगा कि ये जमीन तो किसी और की थी, तो अब ये जमान किस पर आएगा, जिसने जमानत दी थी। भाई बात समझ में आ गई। अच्छा, सूरत ये बयान हो रही है कि शफीय ने बाय पर दावा किया था, अभी बयान हुआ क्यों बाय पर क्यों दावा किया था, क्योंकि वो साहिबे याद था। जब साहिबे याद था तो जमीन काजी ने किस से दिलाई, बाय से ली, और किसके हवाले की, शफी के हवाले कर दी, यानी उसको उसको उसके हक में फैसला कर दिया। तो अब अगर जमीन में कोई मसला निकलता है, उसका कोई और मालिक निकल आया, तो फिर ये जो बै के सही होने का जमान है ये किस पर होगा? तो कहते हैं भाई जाहिर सी बात है, ये बाय से दिलवाई है तो जमान भी बाय पर आएगा, जमान भी किस पर आएगा, बाय पर आएगा। मसलन चंद दिनों बाद پتہ لگا کہ اس زمین کا مالک تو زید ہے، یہ جو بائے جس نے بیچی یہ تو اس کا مالک ہی نہیں ہے بھائی، مالک ہی صورت سمجھ میں آ رہی ہے. شفیع نے زمین لے لی تھی بائے سے، فیصلہ قاضی نے کر دیا، پھر پتا چلا کچھ عرصے بعد یہ زمین تو زید کی تھی، جب زید کی تھی زید قاضی کے پاس آ گیا سیدھا، قاضی صاحب یہ زمین تو میری ہے، آپ نے شفیع کے حق میں فیصلہ کیا ہے، اور زید پھر اپنے گواہ لے کر آئے گا، گواہ پیش کرے گا، ثابت ہو گیا کہ واقعی یہ زمین تو زید کی ہے، قاضی زمین اس کو واپس دلا دے گا، لیکن شفیع کے پیسے مارے گئے کہ نہیں مارے گئے؟ شفیع نے تو بائے کو پیسے دیے تھے، تو اب وہ پیسے وصول کرنے، وہ زمان کس سے لیں گے وہ تاوان؟ تو کہتے ہیں بھائی والعہدۃ علی البائع، بے کے صحیح ہونے کا زمان کس پر ہے؟ بائے پر ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی، اس سے وصول کیے جائیں گے پیسے، کیونکہ اس نے لیے ہیں اور اس نے ہی زمین حوالے کی ہے. کہتے ہیں والعہدۃ علی البائع، اور بے کے صحیح ہونے کا زمان جو ہے علی البائع وہ بائے پر ہوگا، حتی یجب تسلیم الدار علی البائع، یہاں تک کہ واجب ہے گھر کا سپرد کرنا بائے پر. قاضی نے کس کے حق میں فیصلہ کیا؟ شفیع کے حق میں. تو شفیع کو زمین حوالے کون کرے گا؟ بائے کرے گا. تو زمین کا دینا بھی بائے کی ذمہ داری، اور اگر کوئی اور مستحق نکل آیا تو سمن کی واپسی بھی بائے کی ذمہ داری ہے. کہ یہ معنی حتی یجب تسلیم الدار علی البائع، یہاں تک کہ واجب ہے اس گھر کا سپرد کرنا بائے پر. وعند الاستحقاق تکون عہدۃ الثمن علی البائع، استحقاق مستحق ہونا، مستحق نکلنا، مثلا اس گھر کا کوئی اور مستحق نکل آیا، زید نکل آیا، تو کہتے ہیں وعند الاستحقاق، اور مستحق ہونے کی صورت میں، یوں کو حقدار ہونے کی صورت میں کہ کوئی اور اس گھر کا حقدار ہے، وعند الاستحقاق اور استحقاق کی صورت میں تکون عہدۃ الثمن علی البائع، ثمن کا زمان جو ہے وہ بائے پر ہوگا. فیطلب منہ، تو اس سے طلب کیا جائے گا، ثمن کو اس سے طلب کیا جائے گا. بھائی دیکھیے، یہ وہ صورت تھی جب بائے سے اس نے لی ہے زمین، اور سمن بھی کس کو دیے؟ بائے کو. اور اگر اس نے زمین کس سے لی؟ مشتری سے، اور سمن بھی کس کو دیے؟ مشتری کو دیے ہیں، تو پھر عہدہ جو ہے وہ مشتری پر ہوگا. کس پر ہوگا؟ مثلا کچھ عرصے بعد ایک آدمی، مثلا کچھ عرصے بعد زید نے مقدمہ کر دیا کہ قاضی صاحب وہ زمین تو میری ہے، تو قاضی وہ شفیع سے زمین اس کو دلوا دے گا، بینہ وغیرہ اس نے قائم کر دی. اب شفیع کے پیسے ڈوبے ہیں، تو شفیع نے کس سے لیے، کس کو دیے تھے پیسے؟ مشتری کو. تو وہ قاضی کے پاس جائے گا اور مشتری سے کیا کر لے گا؟ سمن وصول کر لے گا. اب مشتری بیچارے کے بھی تو پیسے ڈوبے ہیں، اس نے کس کو دیے تھے پہلے؟ بائے کو دیے تھے. مشتری پھر بائے سے وصول کر لے گا، یا قاضی کے پاس چلا جائے گا اور بائے سے ان کی وصولی کروا لے گا. آگے دیکھیے بھائی، وللشفیع خیار الرؤیۃ والعیب، اور شفیع کو خیار رؤیت بھی ہوگا اور خیار عیب بھی. بھائی یاد رکھیے، آپ جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں، شریعت نے آپ کو خیار رؤیت دیا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کو بغیر دیکھے کوئی چیز خریدنا پڑ جاتی ہے، تو آپ نے چیز خرید لی، پھر جب آپ نے اس چیز کو دیکھا تو وہ آپ کو پسند نہیں آئی، تو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے، آپ وہ چیز واپس کر سکتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں خیار رؤیت. خیار رؤیت، خیار یعنی اختیار ہے آپ کو، رؤیت دیکھنا، دیکھنا، دیکھنے کا اختیار. تو جب آپ کو وہ چیز پسند نہیں آئی، آپ وہ واپس کر سکتے ہیں. بھائی نے آپ سے کہا کیوں بھائی، کیوں واپس کر رہے ہو یہ چیز، اس میں کیا خرابی ہے؟ آپ کہتے ہیں کوئی خرابی نہیں، لیکن مجھے پسند نہیں آئی، تو اس کو واپس لینی پڑے گی وہ چیز. ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے پہلے وہ چیز دیکھی نہ ہو بھائی، اگر دیکھی ہوئی ہے پھر تو خیار رؤیت ہے ہی نہیں آپ کو، کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں اس چیز کو. یہ وہ صورت ہے جب آپ نے وہ چیز نہ دیکھی ہو. या इसी तरह आपने कोई मकान खरीदा है, बाहर से तो देखा है लेकिन अंदर से आपने उसको नहीं देखा हुआ, आपने खरीद लिया भाई जल्दी में थे और फिर जब अंदर देखा तो पसंद नहीं आया, कोई खराबी नहीं है, कोई ऐब नहीं है, लेकिन आपको पसंद नहीं आया, तो शरीयत ने आपको हक दिया है कि आप उसको वापस कर सकते हैं। और एक है खियारे ऐब। खियारे ऐब यह है कि आपने कोई चीज खरीदी और फिर उसमें किसी ऐब का पता चला आपको और वो ऐब बाय की तरफ से आया था, आपके पास नया ऐब पैदा नहीं हुआ बल्कि कहां से आया है, बाय के पास से ही ये ऐब आया है, तो इस सूरत में भी शरीयत ने आपको हक दिया है, आप उस चीज को वापस कर सकते हैं खियार ऐब की वजह से। मसलन आपने एक मकान खरीदा, आपने उस घर को अंदर से भी देख लिया है और फिर खरीद भी लिया, अब आपको खियारे रोयत तो नहीं लेकिन खियारे ऐब अभी भी है। चुनांचे कुछ दिनों बाद बारिशें शुरू हुई तो आपने देखा इसकी तो सारी छतें टपक रही हैं, या इस तरह के कोई और कुछ मसाइल हैं इसके अंदर, तो इस सूरत में शरीयत ने आपको हक दिया है, आप इस ऐब की वजह से जो बाय की तरफ से ही आया है उस मबीए को वापस कर सकते हैं। अब मसला ये चल रहा है, वो कहते हैं वली शफी खियार रुयती वल आयबी, शफी ने वो मकान शुफा करके ले लिया, काजी के पास गया और वो मकान ले लिया तलबे खुसूमत करके, तो क्या इस शफी को भी खियार रुयत होगा, क्या इसको भी खियार ऐब होगा? कहते हैं हां भाई, इसको भी खियार रोयत भी है और खियारे ऐब भी है, अगर इसको पसंद ना आए देखने के बाद वापस कर सकता है, या इसमें कोई ऐब निकल आए तो भी वापस लौटा सकता है। तो कहते हैं वली वली शफी खियार रोयती वल ऐबी, और शफी को खियार रोयत और खियार ऐब का हक है, व इन शरतल मुश्तरिल बराअत अनहु, अगरचे शर्त लगा दी हो मुश्तरी ने उससे बराअत की, उससे बरी होने की अगरचे उसने शर्त लगाई हो कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं, किसी ऐब का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मसलन तलब खुसूमत में मुश्तरी ने घर इसके हवाले करते हुए कहा कि ठीक है ये घर आप ले लें, आपका शुफा साबित हो गया, लेकिन मैं इस घर में किसी ऐब का जिम्मेदार नहीं हूं, उसने बाकायदा शर्त लगा दी। याद रखिए आम बया में अगर बाय बराअत का इजहार कर दे, बराअत की शर्त लगा दे, तो फिर आप ऐब की वजह से वापस नहीं कर सकते। मसलन आप किसी से गाड़ी खरीदने लगे, शरीयत ने आपको हक दिया है कि अगर इस गाड़ी में कोई ऐसे ऐब आपको मिल गया जो किसकी तरफ से आया है, बाय की तरफ से, तो आप उसे वापस लौटा सकते हैं, लेकिन बाय ने जब आपको गाड़ी बेचने लगा तो उसने कह दिया कि गाड़ी आपके सामने है, आप इसको खूब अच्छी तरह देख लीजिए, मैं बाद में किसी ऐब का जिम्मेदार नहीं होऊंगा, बस भाई अब आपका खियार ऐब खत्म हो गया, अब आपने गाड़ी ले ली और बाद में कोई ऐब भी मिल गया तो भी आप वापस नहीं कर सकते, क्योंकि उसने ऐब से बराअत का इजहार कर दिया था कि मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा किसी ऐब का, आप खुद देख लें अच्छी तरह। तो यहां पर भी अगर मुश्तरी ने बराअत की शर्त लगा दी थी, कहते हैं भाई बेशक बराअत की शर्त भी लगा दे फिर भी यहां खियार ऐब रहेगा, भाई क्यों? आम बै में खत्म हो जाता है और ये भी तो बै ही है ना, समन देकर क्या ले रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, तो यहां क्यों बाकी रहेगा? कहते हैं ये आम बै की तरह नहीं है, आम बै की तरह आम बै में दोनों तरफ से रजामंदी होती है और यहां पर तो अमूमन शफी तो राजी है, मुश्तरी तो राजी नहीं होता, उससे तो जबरन ली जाती है, जबरन ली जाती है। इस पर आपके जहन में इश्काल आएगा कि भाई शुफा में एक वो सूरत भी तो है कि मुकदमे की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप सीधा मुश्तरी के पास गए और मुश्तरी को कहा कि मैंने तलब खुसूमत भी कर ली, मैंने तलब इशहाद भी कर ली, मैं आप इस घर पर शुफा तलब करता हूं जो आपने खरीदा है, तो मुश्तरी घर वैसे ही उसके हवाले कर देता है कि ठीक है समन मुझे दो ये घर ले लो, काजी के पास जाने की जरूरत नहीं। तो अब तो दोनों तरफ से बाहमी रजामंदी है कि नहीं? अब तो दोनों तरफ से बाहमी रजामंदी है। अब अगर मुश्तरी कह दे कि मैं किसी ऐब का जिम्मेदार नहीं होऊंगा, तो खियार ऐब खत्म होना चाहिए। लेकिन फुकहा फरमाते नहीं, यहां पर भी बेशक वो खियार ऐब से बराअत की शर्त लगा दे, फिर भी शफीअ को खियार ऐब होगा। क्यों भाई? यहां तो बाहमी रजामंदी भी हो गई और बराअत की उसने शर्त भी लगा दी। कहते हैं भाई, यहां अगरचे उसने बराअत की शर्त लगाई है, लेकिन रजामंदी सिर्फ शफीअ की तरफ से है, मुश्तरी की तरफ से अभी भी पूरी रजामंदी नहीं। क्योंकि बजाहिर यही जहन में आता है कि मुकदमे वगैरह से बचने के लिए जमीन वैसे ही दे रहा है। जहन में आता है या नहीं आता कि मुकदमे से बचना चाहता है कि क्या मुकदमा जाके लड़ूंगा और फिर फैसला फिर इसी के हक में हो जाना है, तो चलो यही मामला खत्म करता हूं, जान छुड़ाता हूं। तो लिहाजा गोया पूरे तौर पर रजा यहां भी नहीं है भाई। ये माना है वली शफी खियार रोयति वल ऐब व इन शरत अल मुश्तरी अल बराअत अनहु, और मुश्तरी को खियार रोयत और खियार ऐब होगा अगरचे मुश्तरी ने शर्त लगा दी हो उससे बराअत की, उसके उसके जिम्मेदार न होने की। व इन इख्तलफ शफी वल मुश्तरी फि समन सुद्दिक अल मुश्तरी, और अगर इख्तिलाफ किया शफी ने और मुश्तरी ने फि समन समन के बारे में, सुद्दिक अल मुश्तरी ऐ मअल हल्फी, तस्दीक की जाएगी मुश्तरी की यानी हल्फ के साथ यानी कसम के साथ। देखो भाई, कल मैंने जिक्र किया था कि हदीस में आता है अलबय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा, गवाह पेश करना किसके जिम्मे है? मुद्दई के जिम्मे। और कसम खाना ये किसके जिम्मे है? मुद्दाले यानी मुनकिर के है, जो इनकार करने वाला है। और मैंने आपको बतलाया था कि किताबों में अगर इबारत आ जाए कि कौल फुला का मुअतबर है, तो आप समझ जाएं कि ये कौन है? मुनकिर है, मुनकिर है। कौल किसका मुअतबर? कसम। कसम किसकी? कसम में कौल है ना, एक में के पास तो कौल भाई मुद्दाई के कौल का एतबार नहीं। मुद्दाई गवाह लेकर आओ भाई, गवाह लेकर आओ। हां, मुद्दा अलह के कौल का एतबार है, अगर वो कसम उठा लेता है इनकार की तो मुकदमा खत्म हो जाएगा। तो कौल किसका मुतबर होता है? मुनकिर का। और कसम के साथ या बगैर कसम के? कसम के साथ। तो जहां कहीं ये इबारत आ जाए फल कौल लहू, कौल उसका मुतबर है, तो आप समझ जाइए मुनकिर है। और कौल वैसे ही मुतबर है या कसम के साथ? कसम के साथ। तो वो हर जगह जिक्र नहीं करते क्योंकि ये हर फिका पढ़ने वाला जानता है। तो कहते हैं वह इन इख्तलाफा शफी उल मुश्तरी फि समनी, और अगर इख्तिलाफ हुआ शफी और मुश्तरी का समन के बारे में, सुद्दिकल मुश्तरी, तो तस्दीक की जाएगी मुश्तरी की ऐ माल हल्फी, कसम के साथ। क्या पता चला आपको? सुद्दिकल मुश्तरी, मुश्तरी की तस्दीक की जाएगी। क्या मतलब? मालूम हुआ मुश्तरी मुनकिर है। बात समझ में आ गई भाई? दोनों में इख्तिलाफ हो जाता है। मसलन शफी कहता है काजी साहब इसने ये जमीन 10 लाख की ली है, मुश्तरी कहता है नहीं काजी साहब मैंने ये जमीन 12 लाख की ली है। अब इख्तिलाफ आ गया, अब इख्तिलाफ आ गया। तो शफी जो है उसके जिम्मे बयीना होगा, वो दो गवाह पेश करेगा। वो दो गवाह आकर कहेंगे काजी साहब हमारे सामने बय हुई थी 10 लाख के अंदर हुई थी। बात समझ में आ गई? और अगर वो गवाह पेश नहीं कर सका तो फिर किसको कसम दी जाएगी? मुद्दाले यानी वो जो मुनकिर है, जो मुश्तरी है, उसको कसम दी जाएगी। और वो कसम उठा लेता है तो उसकी तस्दीक कर ली जाएगी और बाय को फिर और शफी को फिर 12 लाख ही देने पड़ेंगे। तो कहते हैं वहीन इख्तलफ शफी उल मुश्तरी फिस्ता मनी सुद्दिक अल मुश्तरी ऐ माल हल्फी, जब इख्तलाफ हो जाए शफी और मुश्तरी का समन के बारे में, तो मुश्तरी की तस्दीक की जाएगी ऐ माल हल्फी यानी कसम के साथ। लिअन शफी यद्दई इस्तिहकाक अद्दार इंद नक़द अल अक़ल वल मुश्तरी युनकिरुहु, लिअन शफी, इसलिए क्योंकि शफी जो है वो दावा कर रहा है इस्तेहकाक अद्दारी, उस घर के मुस्तहिक होने का, इंदा नकदिल अकल्ली, नकद का, नकदा या नकदु का माने अदा करना, अदा करना। इंदा नकदिल अकल्ली, थोड़े पैसों की अदायगी के वक्त, थोड़े पैसों की अदायगी के वक्त वो घर के मुस्तहिक होने का दावा कर रहा है। वल मुश्तरी युनकिरहू, वल मुश्तरी, या इसका आतफ अशफिया पर है और अशफिया अन्ना का इसम है, वो मंसूब, तो ये भी मंसूब। वल मुश्तरी युनकिरहू, और मुश्तरी उसका इनकार करता है। भाई बतलाना ये चाहते हैं, शारह आपको बतलाना ये चाहते हैं कि मातिन ने क्या कहा, किसकी तस्दीक की जाएगी, मुश्तरी की। मालूम हो मुश्तरी मुनकिर है और शफीअ मुद्दाई है। अब वो मुद्दाई कैसे है और ये मुनकिर कैसे बतला रहे हैं। मसलन वो 10 लाख कह रहा है और ये 12 लाख मुश्तरी कह रहा है, तो गोया शफीअ इस बात का दावा कर रहा है कि मैं इन थोड़े पैसों की अदायगी से घर का मुस्तहिक हुआ हूं। मैं किससे, यानी वो बै थोड़े पैसों में हुई थी, तो मैं थोड़े पैसों से घर का मुस्तहिक बन रहा हूं, थोड़े पैसों से। और मुश्तरी उसका इनकार कर रहा है कि ये थोड़े पैसों की वजह से घर का मुस्तहिक नहीं हो रहा। बात समझ में आ गई। तो एक मुद्दाई बन गया, दावा कर रहा है कि मैं घर का मुस्तहिक हूं थोड़े पैसों की, यानी 10 लाख की अदायगी पर ही, और मुश्तरी उसका इनकार कर रहा है। तो ये देखो एक मुद्दाई बन गया, एक मुनकिर बन गया। सूरत समझ में आ गई। वलाओ बरहाना फशफीउ अहक्कु, आपकी किताबों में इबारत इसी तरह है, वलाओ बरहाना। हाँ हाँ, ये होना चाहिए वलाओ बरहाना, नून के साथ अलिफ होना चाहिए भाई, ये इस तस्ही करें भाई, ये इबारत दुरुस्त नहीं है। वलाओ बरहाना तस्निया का सीगा है, और अगर उन दोनों ने बयना कायम कर दी, उन शफीअ अपने गवाह ले आया कि काजी साहेब 10 लाख में ये बै हुई थी, ये दो गवाह मौजूद थे जब बै हो रही थी, और मुश्तरी अपने दो गवाह ले आया, वो कहते हैं काजी साहब हमारे सामने बै हुई थी 12 लाख में, ये माना है वलाओ बरहाना, उन दोनों ने क्या किया, गवाह पेश कर दिए। तो ये तस्निया का सीगा है। तो अब किसके गवाह, किसके गवाह कबूल करें, कहते हैं फशफीउ अहक्कु, शफीअ ज्यादा लायक है, ज्यादा हकदार है कि उसके बयना को कबूल किया जाए, यानी शफी के बयना, शफी के गवाह क्या कह रहे हैं, 10 लाख में बै हुई है, तो शफी के गवाहों को सुना जाएगा भाई, वो ज्यादा हकदार हैं। तो कहते हैं वलाओ बरहाना, और अगर शफी और मुश्तरी दोनों ने बयना कायम कर दी, फशफीउ अहक्कु, तो शफी ज्यादा हकदार है, यानी उसकी बयना को सुना जाएगा, कबूल किया जाएगा, यानी उस पर फिर फैसला होगा। हादा इंद अबी हनीफा व मुहम्मदिन रहिमहुम अल्लाह तआला, ये तरफेन रहिमहुम अल्लाह के नजदीक है। तरफेन शेखेन साहिबेन, ये तो आप जानते होंगे भाई। भाई देखो फिर सुन लो, मुख्तसरन जिक्र कर देता हूं, हमारे तीन बड़े अइमा, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, उस और इसी तरह इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह और इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह, इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह इन दोनों के उस्ताद हैं, इमाम अबू यूसुफ के भी और इमाम मोहम्मद के भी। तो इमाम अबू हनीफा इन दोनों के उस्ताद हैं और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह इन दोनों के शागिर्द हैं। उन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से भी पढ़ा और फिर उसके बाद इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से भी पढ़ा बाद में। तो ये दोनों के शागिर्द, तो गोया दो किनारे हो गए, एक है तरफ आला, सबसे आला किनारा वो है इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, वो दोनों के उस्ताद हैं, वो दोनों के उस्ताद हैं। और एक है तरफ अदना, निचला किनारा, और तरफ अदना पर इमाम मोहम्मद हैं, वो दोनों के शागिर्द हैं, वो दोनों के शागिर्द हैं। और इमाम अबू यूसुफ वो मुतवस्सित हैं, एक के उस्ताद हैं और एक के शागिर्द हैं। तो लिहाजा जब इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ का जिक्र करना हो तो कहते हैं शेखैन, क्योंकि ये दोनों उस्ताज हैं किसके, امام محمد شیخین بھائی، دو وہ دو استاذ. اور جب دو شاگردوں کا ذکر کرنا ہو تو کہتے ہیں صاحبین، صاحب کا معنی ساتھی، وہ دو ساتھی یعنی شاگرد ہونے میں، امام صاحب کے شاگرد ہونے میں یہ دونوں کیا ہیں؟ ساتھی ہیں. امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہونے میں تو صاحبین سے کون مراد ہوتے ہیں؟ امام ابو یوسف اور امام محمد. اور جب کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد ایک طرف ہو جائیں تو پھر کہتے ہیں طرفین، کیونکہ طرف اعلی کون؟ امام ابو حنیفہ، اور طرف ادنا کون؟ امام محمد. تو طرفین دونوں کنارے، ایک اوپر والا ایک نیچے والا، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحم اللہ مراد ہوتے ہیں. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں دیکھو، ھذا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، یہ کس کے نزدیک ہے؟ کیا نام لیں گے ان دونوں کا؟ طرفین. یہ امام، یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے. وحجتہما ما ذکرنا، حجت دلیل کو کہتے ہیں، اور ان دونوں کی دلیل ما وہ ہے، ذکرنا جو ہم نے ذکر کر دی. ان دونوں کی دلیل وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دی. کون سی دلیل بھائی؟ ابھی تو بتایا صدق المشتری کے آگے بتایا تھا کہ مدعی کون بن رہا ہے؟ شفیع. اور منکر کون بن رہا ہے؟ مشتری. اور بینہ کس کا سنا جاتا ہے؟ مدعی کا. اور مدعی کا بینہ نہیں سنا جاتا بلکہ اس کی تو قسم سنی جاتی ہے، قسم کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو جب شفیع مدعی ہوا تو بینہ بھی اسی کی زیادہ لائق ہے کہ اس کو سنا جائے اور اس پر فیصلہ کیا جائے. دلیل سمجھ بھی آئی کہ نہیں سب کو؟ تو جو کتاب میں آیا وحجتہما ما ذکرنا، اور ان دونوں کی دلیل یعنی طرفین کی دلیل ما وہ ہے، ذکرنا جو ہم نے ذکر کر دی. اس سے اوپر والی سطر میں جو آیا تھا لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَدَّعِ اسْتِحْقَاقَ الدَّارِ عِنْدَ نَقْدِ الْأَقَلِّ وَالْمُشْتَرِيَّ يُنْكِرُهُ، یہ مراد ہے بھائی، یہ دلیل ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی کہ جس میں انہوں نے بتلایا تھا کہ شفیع کس طرح مدعی بن رہا ہے اور مشتری کس طرح منکر بن رہا ہے. تو وہ حجتہما ما ذکرنا، یہ اس کے ذریعے اس کی طرف اشارہ ہے بھائی. تو کہتے ہیں وہ حجتہما ما ذکرنا، اور ان دونوں کی دلیل وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دی. وہ ایزن یمکن صدق البینتین، کہتے ہیں آپ یہاں سے ایک اور چھوٹی سی بات بتلا رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ نہ کہیں کہ ایک بینہ سچی ہے اور ایک بینہ جھوٹی ہے. ممکن ہے دونوں گواہیاں سچی ہوں؟ دونوں گواہیاں کیا ہوں؟ سچی ہوں. بھئی کس طرح دونوں گواہیاں؟ کیسے؟ ایک گواہ کہہ رہے ہیں 10 لاکھ میں بیع ہمارے سامنے ہوئی ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں 12 لاکھ میں ہمارے سامنے ہوئی ہے. دونوں کیسے سچ ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے پہلے ایک دفعہ عقد ہوا ہو بائے اور مشتری میں، اور اس وقت یہ پہلے دو گواہ تھے اور اس وقت بیع ہوئی تھی 10 لاکھ میں. پھر بعد میں بائے اور مشتری آپس میں پھر راضی ہوئے، بائے نے کہا نہیں بھائی یہ پیسے آپ نے، میں راضی نہیں ہوں ویسے، ٹھیک ہے چیز آپ کی ہو گئی، بیع ہو گئی سارا کچھ، لیکن میں خوش نہیں ہوں. مشتری نے کہا چلو پھر دوبارہ بیع کر لیتے ہیں اور میں آپ کو 12 لاکھ دے دیتا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ نیک آدمی تھا، اس نے دوبارہ بیع کر لی. تو اب دوسری بیع 12 لاکھ میں ہوئی اور یہ والے دو گواہ اس دوسری بیع میں موجود تھے، تو انہوں نے اس کی گواہی دے دی. تو دونوں گواہیاں درست بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال بینہ کس کی سنی جائے گی یہاں پر؟ شفیع کی. تو کہتے ہیں وَأَيْزًا يُمْكِنُ صِدْقُ الْبَيِّنَتَيْنِ، اور یہ بھی اور ممکن ہے دونوں بینوں کا سچ ہونا. بِجَرَيَانِ الْعَقْدِ مَرَّتَيْنِ، عقد کے دو مرتبہ جاری ہونے کی وجہ سے، عقد کے دو مرتبہ جاری یعنی عقد دو مرتبہ جاری ہوا ہو تو دونوں بینوں کا سچ ہونا بھی ممکن ہے. فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِالْأَقَلِّ، تو شفیع اس گھر کو لے لے گا. بِالْأَقَلِّ، کس کے بدلے؟ اقل سمن کے بدلے، یعنی 10 لاکھ کے بدلے. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي أَحَقُّ، مشتری کا بینہ زیادہ لائق ہے. امام یوسف رحمہ اللہ بھائی وہ فرماتے ہیں کہ مشتری کا بینہ زیادہ لائق ہے اس کو سنا جائے. توجہ ہے. شفیع نے دو گواہ پیش کیے, وہ کیا کہہ رہے تھے؟ دس لاکھ میں یہ بیع ہوئی ہے ہمارے سامنے. اور مشتری نے دو گواہ پیش کیے, وہ دو گواہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بارہ لاکھ میں یہ بیع ہوئی تھی ہمارے سامنے. طرفین کی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ شفیع جو ہے وہ مدعی ہے اور مشتری جو ہے منکر ہے. لیکن امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں, یہاں پر مشتری جو ہے وہ مدعی ہے اور شفیع منکر ہے. دیکھا, ایک کو مدعی بنانا ہے اور ایک کو منکر بنانا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہاں مشتری مدعی ہے اور شفیع منکر ہے. بھائی وہ کیسے؟ کہتے ہیں دیکھیں, شفیع کتنے کی بات کر رہا ہے؟ دس لاکھ کی. اور مشتری کتنے کی بات کر رہا ہے؟ بارہ لاکھ. معلوم ہوا اس بارہ میں سے دس لاکھ تو شفیع بھی مان رہا ہے. اس بارہ میں سے دس لاکھ تو شفیع بھی مان رہا ہے. ہاں مشتری دو لاکھ زائد کی بات کر رہا ہے, دو لاکھ
زائد,
دو لاکھ زائد کی بات کر رہا ہے. تو یہ دو لاکھ زائد کا وہ دعویٰ کر رہا ہے اور شفیع اس کا انکار کر رہا ہے. معلوم ہوا وہ منکر ہے, یہ مدعی ہے. تو لہذا بینہ کس کی سنی جائے گی؟ مشتری کی. بات سمجھ میں آ گئی. یہ معنی ہے وعند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی بینۃ المشتری احق, کہ مشتری کی جو بینہ ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ اس کو سنا جائے, قبول کیا جائے. لأنها اکثر اثباتا, اس لیے کیونکہ وہ زیادہ ہے باعتبار اس بات کے, یعنی وہ زیادہ سمن ثابت کر رہی ہے. وہ شفیع والی دس لاکھ ثابت کر رہی ہے تو یہ بارہ لاکھ ثابت. یہ معنی ہے لأنها, اس لیے کیونکہ اس مشتری کی جو بینہ ہے اکثر, وہ زیادہ ہے اثباتا. کس اعتبار سے زیادہ ہے؟ اس بات کے اعتبار سے کہ یہ زیادہ سمن ثابت کر رہی. وَإِنِ ادَّعَى الْمُشْتَرِي سَمَنًا وَبَائِعُهُ أَقَلَّ مِنْهُ بِلَا قَبْضِهِ فَالْقَوْلُ لَهُ. اب اور صورت آ گئی بھائی. صورت مسئلہ یہ کہ اختلاف آ گیا مشتری اور بائے میں, مشتری اور بائے میں اختلاف آ گیا. مشتری کہتا ہے قاضی صاحب یہ زمین میں نے بائے سے بارہ لاکھ میں خریدی, اور بائے کہتے ہیں نہیں قاضی صاحب میں نے یہ زمین اس کو دس لاکھ میں بیچی ہے. اب بائے کی بات مانے تو شفیع کو بھی دس لاکھ دینا پڑیں گے, اور مشتری کی بات مانے تو شفیع کو بارہ لاکھ دینے, مثلے سمن دینے ہیں. توجہ ہے, بائے اور مشتری کی بات ہو رہی ہے, شفیع کی نہیں. بائے اور مشتری کا آپس میں اختلاف ہوا, شفیع نے تو شفا کیا ہوا ہے, اب ان کا آپس میں وہیں پر قاضی کے پاس اختلاف ہو گیا. بائے کیا کہتا ہے؟
دس
لاکھ. اور مشتری کیا کہتا ہے؟ میں نے کتنے میں لیا؟ بارہ لاکھ میں. تو اب کس کی قول کو لیا جائے گا؟ اگر بائے کا قول لیں تو شفیع نے مثلے سمن دینے, تو شفیع پر بھی کتنے آئیں گے؟ دس لاکھ. اور اگر مشتری کی بات لیں تو پھر شفیع پر کتنے آئیں گے؟ بارہ لاکھ آئیں گے. کہتے ہیں بھائی یہاں دو صورتیں ہیں, یا تو یہ دو صورتیں ہیں, یہ جو بائے اور مشتری میں اختلاف آیا, بائے سمن وصول کر چکا ہے اس کے بعد اختلاف ہو رہا ہے, یا ابھی پیسے وصول ہی نہیں کیے اس سے پہلے اختلاف ہو رہا ہے. اگر اس سے پہلے اختلاف ہو رہا ہے تو پھر تو بائے کی بات ٹھیک ہے, تھوڑے پیسوں میں کیا کر دو, فیصلہ کر دیں. اور اگر بائے پیسے وصول کر چکا ہے پھر تو وہ اجنبی ہو چکا ہے, اس کا اس معاملے سے تعلق ہی نہیں رہا. اب بات کس کی لی جائے گی؟ مشتری کی لی جائے گی. دو صورتیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ بائے وہ پیسے لے چکا ہے اس کے بعد اختلاف ہوا ہے, یا ابھی پیسے اس نے لینے ہیں. اگر اس نے ابھی پیسے لینے ہیں, پیسے لینے ہیں, اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بے کتنے میں ہوئی ہے؟ دس لاکھ میں ہوئی ہے. اور مشتری کیا کہہ رہا ہے؟ بارہ لاکھ میں ہوئی ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ مشتری جھوٹ بول رہا ہے, ٹھیک ہے, بے بارہ میں ہوئی ہوگی, लेकिन मालूम होता है बाय 2 लाख छोड़ रहा है उसके लिए, और बाय का पैसा समन किसका हक है, बाय का, तो वो अपने हक में कमी कर सकता है या नहीं कर सकता। आपने एक आदमी से 100 रुपया लेना है, आप उसको कहते हैं बस मुझे 50 दे दो बाकी आप रखो, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका हक है। तो यहां पर भी जब बाय ने अभी समन वसूल नहीं किए, अभी वसूल करने हैं, फिर भी वो कम जिक्र कर रहा है, मालूम हुआ उसने जायद क्या कर दिए, छोड़ दिए हैं, छोड़ दिए, और ये उसका हक है, वो छोड़ सकता है। तो जब छोड़ दिए हैं तो वो कमी शफी के हक में भी होगी, लिहाजा शफी को भी थोड़े ही पैसे देने पड़ेंगे, वो जो बाय जिक्र कर रहा है। देखिए भाई किताब पर, वह इनी दाल मुश्तरी समनन, अगर दावा किया मुश्तरी ने एक समन का, वह बाइउहु अकल्ला मिन्हु, और बाय ने उससे थोड़े समन का, बिला कब्ज ही, बगैर उसके कब्जा किए, फल कौलू लहू, तो कौल किसका मोतबर, बाय का कौल मोतबर, बाय का कौल मोतबर है। क्या माना, बाय का कौल मोतबर है, वो इबारत आ गई जो मैं जगह जगह आपको बतला रहा था, कसम के साथ, और दूसरे के जिम्मे क्या आएगा, दूसरा बैयना फिर पेश कर सकता है, भाई बैयना पेश कर सकता है। तो फल कौल लहू, तो बाय का कौल मोतबर है, आई बिला कब्ज समानी फल कौल लिल बाई, यानी बगैर समन के कब्जे के तो कौल जो है वो बाय का मोतबर है, कौल बाय का। देखा पहले मतन देखो, वह इनी दाल मुश्तरी समनन, अगर दावा किया मुश्तरी ने किसी समन का, वह बाइउहु अकल्ला मिन्हु, और बाय ने उससे थोड़े समन का दावा किया, बिला कब्ज ही, बगैर उसके कब्ज, ये कब्ज ही की हा जमीर किसको राजे है, आगे शरा में बतला रहे हैं, आई बिला कब्ज समानी, बगैर उस समन के कब्जा के, यानी उसने समन पर कब्जा नहीं किया था, तो फल कौलु लिल बाई, तो कौल किसका है, मतन में क्या आया फल कौलु लहू, ये लहू जमीर किसको राजे, शरा में बता दिया, फल कौलु लिल बाई, कौल किसका मोतबर है, बाय का। वह मा कब्ज ही लिल मुश्तरी, देखा आगे फिर जमीर का मर्रा बतलाएंगे, आई मा कब्ज समनी फल कौलु लिल मुश्तरी, समन के कब्जे के साथ मुश्तरी का कौल मोतबर है। जब बाय पैसे ले चुका है, बाय क्या कहता है, मैंने 10 लाख में बेची, और मुश्तरी क्या कहता है, 12 लाख में बेची, और बाय 10 लाख वसूल कर चुका है, भाई अब आपका क्या काम है, अब तो आपका मसला ही ये नहीं है, किसके दरमियान चल रहा है, शफी और मुश्तरी के दरमियान मसला है, आप तो पैसे वसूल कर चुके हैं। तो फल कौल मुश्तरी, तो कौल मुश्तरी का मोतबर है, कैसे सूरत होगी, फिर बनाओ दो सूरतें, बाय ने अभी 10 लाख वसूल नहीं किए, बाय ने अभी अपने पैसे वसूल नहीं किए, बाय कह रहा है 10 लाख और मुश्तरी क्या कह रहा है, 12 लाख, इसका मतलब है बाय 2 लाख छोड़ रहा है, जब वो छोड़ रहा है मुश्तरी के लिए तो वो कमी किसके हक में आएगी, शफी के भी हक में आएगी, वो भी उसी के मिसल समन देकर उसने जमीन लेनी है, तो वो भी 10 लाख में जमीन ले लेगा। और अगर बाय वो 10 लाख वसूल कर चुका है, अब तो बाय का यहां ताल्लुक ही न रहा, अब इख्तिलाफ किस में आ गया, मुश्तरी और शफी में आया, शफी क्या कह रहा है 10 लाख में हुई है बे, और मुश्तरी क्या कह रहा है 12 लाख में हुई है, तो अभी गुजश्ता मसला गुजर चुका कि शफी के जिम्मे बयीना है, गवाह ले आए कि 10 लाख में बे हुई है, और कौल किसका मोतबर, अगर गवाह ये पेश नहीं कर सका तो फिर किसका कौल मोतबर है, मुनकिर यानी मुश्तरी का कौल मोतबर है, ये माना है फल कौलु लिल मुश्तरी, कौल किसका मोतबर, मुश्तरी का। सूरत अच्छी तरह सबको समझ में आ गई, इन्होंने आपको बतलाया कि जब बाय और मुश्तरी के दरमियान समन के अंदर इख्तिलाफ आ जाए, और बाय कहता है मैंने मसलन 10 लाख में जमीन बेची है, और मुश्तरी ज्यादा बतलाता है कि मैंने 12 लाख में जमीन खरीदी है, तो मैंने बतलाया इसमें दो सूरतें हैं, या तो बाय ने पैसों पर कब्जा कर लिया होगा, वो पैसे ले चुका है मुश्तरी से, या पैसे उसने अभी नहीं लिए, अगर वो पैसे ले चुका है फिर तो वो अजनबी बन गया, फिर तो उसकी बात की तरफ तवज्जो ही नहीं की जाएगी, और और उसी तरह शफी और मुश्तरी के दरमियान मुकदमा चलेगा। शफी पर जो है वो बयीना आएगी कि वो साबित करे कि थोड़े पैसों में अकद हुआ है, और मुश्तरी पर क्या आ जाएगी, कसम आ जाएगी, तो वो कसम खाएगा। लेकिन अगर बाय ने अभी पैसों पर कब्जा ही नहीं किया, अभी उसने पैसे मुश्तरी से वसूल ही नहीं किए, अब वो कह रहा है कि ये जमीन मैंने 10 लाख में दी है और मुश्तरी कह रहा है कि मैंने 12 लाख में ली है, तो बाय ने तो अभी पैसे वसूल ही नहीं किए, अभी उसने वसूल करने हैं। इसका मतलब है कि वो 2 लाख माफ कर रहा है अपनी तरफ से, क्या कर रहा है,
माफ
हाँ, तो गोया वो बतला ही ये रहा है कि मेरा हक कितना बनता है, 10 लाख
कर
बनता है, 12 लाख नहीं बनता। तो इस सूरत में फिर वो कमी जाहिर होगी और यूं समझेंगे कि बाय ने समन के अंदर कमी कर दी है, लिहाजा वो जो अकल है यानी बाय के कौल को ले लिया जाएगा, बाय का कौल ले लिया जाएगा, और उसके मुताबिक जो है फिर शफी पर भी उतने ही पैसे आएंगे। व अखदा फी हत्तिल कुल्ली बिल कुल्ली, और वो ले लेगा यानी जमीन को, शफीअ ले लेगा जमीन को, फी हत्तिल कुल्ली, हत का माना है मिटाना, खत्म करना, हत्ता या हुत्तु का माना है कम करना, भाई कम करना यानी किसी चीज के नर्ख कीमत वगैरह कम करना, भाई
कम
कम करना। वह अखदा फी हत्तिल कुल्ली बिल कुल्ली, और ले लेगा शफीअ उस घर को, फी हत्तिल कुल्ली, सारे समन को गिराने की सूरत में, सारे समन यानी यू को खत्म करने की सूरत में, बिल्कुल कुल के बदले में। भाई सूरत यह कि बाय ने जमीन मुश्तरी को 10 लाख में बेची, और फिर बाय ने वो सारे पैसे माफ कर दिए, तो अब शफिया कितने पैसों में लेगा, शफिया कितने पैसों में लेगा, तो कहते हैं भाई शफिया को पूरे पैसों में लेनी पड़ेगी जमीन। अगर बाय सारे पैसे माफ कर दे तो फिर शफिया को पूरे ही पैसों में जमीन लेनी पड़ेगी, और अगर बाय थोड़े पैसे कम कर दे तो फिर शफी के हक में भी उतने ही पैसे कम हो जाएंगे। कहते हैं वह अखदा फी हत्तिल कुल्ली बिल कुल्ली, और ले लेगा वो ले लेगा शफी उस जमीन को, फी हत्तिल कुल्ली, कुल समन कम करने की सूरत में, बिल कुल्ली किसके बदले ले लेगा, कुल समन के बदले ले लेगा। भाई क्या वजह है कि जब वो कुछ पैसों की कमी करता है तो आप कहते हैं शफी के हक में भी पैसों की कमी होगी। मसलन बाय ने बेचा था 10 लाख का, और फिर वो मुश्तरी को कहता है आप मुझे 5 लाख दे दो, 5 लाख मैंने आपके लिए छोड़ दिए, तो शफिया भी कितने में ले लेगा, 5 लाख में। अगर उसने 8 लाख छोड़ दिए, कहा सिर्फ मुझे कितने दे दो, 2 लाख, तो शफी भी वो मकान कितने में ले लेगा, 2 लाख में ले लेगा। तो कुछ कम करें तो आप कहते हैं कि शफिया को भी उसका फायदा पहुंचेगा और उसके हिस्से और उसके लिए भी समन में कमी हो जाएगी। लेकिन जब पूरे वो पैसे कम कर देता है और बिल्कुल खत्म कर देता है, तो फिर आप कहते हैं नहीं, अब कोई कमी नहीं होगी, पूरे के पूरे समन देने पड़ेंगे। भाई ने 10 लाख का बेचा था और फिर मुश्तरी को कहता है बस मैंने सारे पैसे माफ किए, ये प्लाट मैंने आपको वैसे ही दे दिया, तो शफिया को भी मुफ्त मिलना चाहिए, लेकिन आप क्या कहते हैं कि नहीं, वो मुफ्त नहीं ले सकता, उसको पूरे समन देने पड़ेंगे। भाई वजह यह है कि अगर हम सारे पैसे माफ कर दें फिर तो शफी का हक शुफा ही खत्म हो जाता है, शफी का हक शुफा ही खत्म हो गया, उसका फायदा हुआ या नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, जमीन उसके हाथ आ रही थी निकल गई, बस अब नहीं मिल सकती। भाई वजह यह याद रखो, ये जो शुफे का हक होता है ये बैअ की सूरत में होता है, और बैअ में क्या होता है कि मुबादलतुल माल बिल माल होता है, जमीन ली है तो बदले में कोई चीज भी ली है, मुफ्त में नहीं दी, मुबादलतुल माल बिल माल, माल के बदले माल हो तो उसको बैअ कहते हैं, जमीन भी माल है और बदले में जो करेंसी दी वो भी क्या है, माल है, तो मुबादलतुल माल बिल माल हुआ, लिहाजा आपको शुफा का हक है, और शुफा का हक सिर्फ बैअ में होता है। और अगर आप समन को पूरे तौर पर खत्म कर दें, जैसे आप अपनी किताब किसी साथी को देते हैं और कहते हैं कि ये किताब आपकी हो गई मेरी तरफ से, इसको कोई बैग कहता है नहीं, इसको तोहफा कहते हैं, तोहफा दिया है। तो अगर सारे समन के खत्म करने का हम एतबार कर लें, फिर तो ये बैग रहेगी नहीं, ये तो हिबा बन जाएगा, तोहफा बन जाएगा, और हिबा और तोहफा में तो हक शुफा नहीं होता, फिर तो इसका हक शुफा ही मारा जाएगा, फायदे के बजाय इसको नुकसान हो जाएगा। लिहाजा कुल समन माफ किए तो कुल समन नहीं माफ होंगे, कुल के कुल ही देने पड़ेंगे, और अगर थोड़े समन माफ किए तो भी वो बैग ही है, तो उतनी ही इसके लिए भी कमी कर दी जाएगी। मसाला समझ में आ गया? तो कहते हैं वह अखादा फी हद तिल कुल्ली बिलकुल्ली, और ले लेगा जमीन को सारे समन माफ करने की सूरत में, सारे समन के बदले। वह मसला तो हद तिल बाजी कद मर्रत फी बाबिल मुराबहती बिकौली ही व शफी या खुद बिल अकल फिल फसलैन। वह मसला तो हद तिल, ये शारह बतला रहे हैं, कहते हैं यहां मतन में तो आया कुल समन माफ करने का जिक्र आया, वह अखदा फी हतिल कुल बिल्कुल, भाई बास को माफ करने वाला मसला यहां जिक्र नहीं कर रहे मातिन, वो क्यों बतला रहे कि भाई वो बास समन को माफ करने वाला मसला बाबुल मुराबहा में गुजर चुका है मतन के अंदर ही, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह मसला तो हतिल बाजी, और बाजे समन को कम करने का जो मसला है, कदम मर्रत तहकीक वो गुजर चुका है, फी बाबिल मुराबहती इसी किताब की बाबे मुराबहा के अंदर, बिकौली ही मातिन के इस कौल के साथ, व शफी या खुजु बिल अकल फिल फसलैन, और शफी ले लेगा अकल समन के बदले दोनों सूरतों में, शफी ले लेगा अकल के बदले दोनों फसलों में। भाई देखिए दो सूरतें बनती हैं यहां, वो समझ लें। बे मसलन हुई 10 लाख में, कितने में? 10 लाख में। अब यहां दो सूरतें हैं, एक सूरत यह है कि बाद में समन में कमी कर दी गई, और एक सूरत यह है कि बाद में समन में ज्यादती कर दी गई। दो फसलें हैं, दो सूरतें हैं। कमी का हक किसका है? बाय का, बाय कमी कर सकता है, मुश्तरी कमी नहीं कर सकता। और ज्यादती का हक किसका है? मुश्तरी का है। आपने 10 की चीज ली है, आप चाहें तो 20 दे दें, लेकिन बाय आपसे जबरदस्ती 20 नहीं निकलवा सकता। तवज्जो है मसले की तरफ। कमी का हक किसका होता है? बाय का। और ज्यादती का हक किसका है? मुश्तरी का। तो अब ये दो सूरतें बन गई, दोनों सूरतों में बैअ के अंदर चाहे कमी की जाए समन में बाद में, चाहे ज्यादती की जाए, वो जो शफीअ जो है वो अकल के बदले ही लेगा। किसके बदले? अकल के बदले। अब हम दोनों अलग सूरतें बना लेते हैं। मसलन बाय ने मकान बेचा था मुश्तरी को 10 लाख का, और बाद में कहते चलो भाई मैंने आपके लिए समन कम कर दिए, आप 10 लाख ना देना, आप 5 लाख दे देना। तो बाय ने क्या कर दी? कमी कर दी। तो बैअ किस पे हुई? 10 लाख पे। और कमी के बाद कितने समन रह गए? 5 लाख। तो अकल क्या है? 5 लाख। तो शफी भी 5 लाख के बदले ये जमीन लेगा। ये जो कमी मुश्तरी के लिए उसने की थी, यही कमी किसके लिए हो जाएगी? शफी के लिए भी। सूरत समझ में आ गई। अब दूसरी सूरत बनाओ, बे हुई 10 लाख में, लेकिन मुश्तरी बाद में खुश होकर कहता है कि ये जगह और ये मकान तो मुझे और भी ज्यादा पसंद आया है, यूं करें आपको मैं 10 लाख नहीं दूंगा, मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा। अब बै कितने पे हुई थी? 10 लाख, लेकिन इसने समन कितने बढ़ा दिए? 15 लाख। तो अकल क्या है? 10 लाख। तो लिहाजा शफी कितने में लेगा? 10 लाख में ले लेगा। सूरत समझ में आ गई। ये माना है के व शफी या खुजू बिल अकल फिल फसलैन, शफी ले लेगा अकल समन के बदले थोड़े समन के बदले, फिल फसलैन दोनों फसलों में, दोनों सूरतों में, यानी चाहे कमी की जाए चाहे ज्यादती की जाए, दोनों सूरतों में जो अकल होगा उसके बदले शफी ले लेगा। यानी यानी शफी को फायदा पहुंच रहा है, फायदा तो शरीयत देगी, अगर कोई उसको नुकसान देना चाहता है नुकसान उस पर लाजिम नहीं होगा। बाएं ने कमी की है तो अब शफी को फायदा पहुंच रहा है तो शरीयत वो फायदा उसको देगी कि उसके लिए भी समन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी भाई। और बाएं ने समन ज्यादा किए हैं, हो सकता है उसने इसलिए ज्यादा किया हो कि शफी लेगा तो इसको 10 के बजाय 15 लाख देने पड़े, भाई आप अपनी तरफ से 5 लाख जायद बेशक दें लेकिन शफी पर आप वो 5 लाख लाजिम नहीं कर सकते, उसको नुकसान नहीं दे सकते। तो दोनों सूरतों में वो अकल के बदले ले लेगा भाई। चलिए बस करें भाई, बस भाई। हादा हुल मराम, वल्लाहु आलम बि हकीकतिल कलाम। बात सबको अच्छी तरह समझ में आ गई? कोई बात ऐसी तो नहीं जो समझ में ना आई हो?